ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य गणाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिषे नमः जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछय गोसाई करी चरण वंदन जाओते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिकेतांग नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशी करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां आपदरणमवेक्ष्णश जसां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय गुरु परंपरा की जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सपार्षद गौर हरि की जय गौर नित्यानंद प्रभु की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय भक्त विघ्न विनाशनकर नृसिंहदेव की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय सर्व विश्वप्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय ब्रजमंडल धाम की जय ब्रजवासी भक्त वृंद की जय ब्रजश्री मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय ब्रजदेवी गण की जय जय चातुर्मास्य व्रत की जय व्रतपालनकारी भक्तवृंद की जय समवेत गौरभक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ ঠাকুর উপদেশামৃত प्रभुपाद सच ठाकुर यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये जीव विमुख क्यों हुआ। भगवान से दूर हट करके इस जगत में आकर के अपना परिचय को खो गया और कितने कितने और जीवात्माओं के साथ अपना संबंध बना लिया, किंतु ये जीवात्मा की नहीं, केवल मात्र किसको शरीर और शरीरधारी जीवों के साथ ही संबंध बनाया। आत्मा के साथ परिचय भी नहीं है, परमात्मा के साथ भी परिचय नहीं है, इससे केवल शरीर खुद किसी को मिला है तो दूसरे शरीरधारी जीवों से ही अपना संबंध बना लिया। इसी अनित्य है, नैमित्तिक है, किंतु तात्कालिक है, ये नित्य चिरस्थाई नहीं है। यदि ये शरीर देकर के दूसरे शरीर के लिए मदद करते हैं या सेवा करते हैं, किंतु न तो हम उनका भी कल्याण कर सकते हैं न अपना, केवल बस एक प्रसन्नता है, रिक्रिएशन है, मनोविनोद है, किंतु ये भी सब समय नहीं, क्योंकि हमारे मन के अनुकूल सब नहीं चलने वाले, ना हम सबके मन के अनुकूल चलने वाले, और न शरीर की रोग सुख मोह से हम रक्षा कर सकते हैं, सब मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, किंतु उनका कर्म उनके साथ है। इसलिए शरीरधारी जीव जो कुछ करता है तो शरीर के लिए, मन के लिए तो कर्म बनता है, और कर्म का फल वो जमा रहता है, उनको भोग करने के लिए बाध्य होता करते हैं। और जो जीव उन्मुख होता है, सेवन्मुख, भगवान के आत्मा परमात्मा के लिए सचेष्ट होता है, शरीर से मन से अनासक्त होकर के, हाँ, तो उनका कर्म नहीं, हाँ, उनका उस समय जो फल होता है वो फल उनको नहीं भोगना होता है, वो उनके लिए कभी दुख कष्ट नहीं पाएंगे। उनका शरीर भी मन भी कैसे होता है, वो केवल मात्र निरपेक्ष अनासक्त, जैसे कोई व्यक्ति किसी के धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में कोई गया एक दिन दो दिन चार दिन के लिए, वो नहीं कहते ये मेरा अपना है और उसका जिम्मेदारी लेके बैठता नहीं, रहा चल दिया। ऐसे जीव के जो भोक्ता अभिमान है, माया में आकर के आबद्ध होकर के अचेतन राज्य में आकर के माया के प्रभु बन गया, कोई गृहपति बन गया, कोई नृपति बन गया, कोई प्रतिपति बन गया, सब अपना अपना मालिकाना, ये मैं इसका मालिक हूँ, किंतु अभिमान करके बद्ध हो करके क्या होता है, चेतनता खो जाता है, खो बैठते हैं और माया के दासत्व करते, गुलामी करते हैं, भगवान के खुला सेवा करना भूल गया और आत्मा का कल्याण तो गया। इसलिए रूपा जी कहते हैं ये जो अभिमान है, भोक्ता अभिमान, यही जीव को किसको भोग करना चाहता है, इस शरीर को, मन को, बस इसको कहाँ तक भोग करेगा, खिला पिला के खुश होगा, सुला के कैसे, इनके पास सामर्थ्य तो है नहीं शरीर के अंदर कि सब कुछ खा पी करके पचा ले, वो भी नहीं कर सकता, सो करके खुश हो जाए वो भी नहीं हो सकता, कुछ भी करेगा ये तो अभिमान है। जब ये माया का दास को, दासत्व को छोड़ करके अचेतन राज्य से चेतन राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस समय बड़ा झंझट, लड़ाई, विपत्ति, कैसे करें, सब कुछ कर सकते, भगवत नाम कीर्तन नहीं, भगवत सेवा नहीं, भगवत स्मरण नहीं, ये बड़ा कठिन है, और माया का खेल तमाशा में मस्त है, रात भर दिन भर थकते नहीं, किंतु इसमें थकान हो जाता है, इसमें नहीं, ये नहीं कर सकते। कहते हैं इसलिए जीव धीरे धीरे करके और चेतन होता है, चेतनता खो बैठते हैं, फिर अपने सब समय उतावला, सहनशीलता नहीं, इतना असहिष्णु हो जाता है, कुछ भी सहन नहीं होता, एलर्जी ऐसे हो जाता है। अच्छा कहे तो भी बुरा लगता है, और बुरा कहे तो आग लग जाता है, बड़ा कठिन होता है। इससे जीव जितना ही भगवान से दूर होते हैं, इसका परिचय देते हैं, इतने असहिष्णु, सहनशीलता खत्म। और क्या क्रोध के साथ साथ मोह, दुखी, इतना दुखी, किसी तरह से प्रसन्नता नहीं है तो क्या करेगा, सब समय दुखी रहते हैं। और जब चेतन राज्य में प्रवेश करने की कोशिश भी करता है तो बड़ा मुश्किल, माला अच्छा नहीं लगता, मंत्र अच्छा नहीं लगता, भक्त लोग अच्छे नहीं लगते, सेवा अच्छा नहीं लगता, सोचते कर्म करूँगा तो कुछ इनाम मिलेगा, किंतु सेवा करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलते तुलसी लगाऊँगा तो एक फल फूल तो आएगा नहीं, बैगुन लगाऊँगा तो कुछ कम से कम कुछ फल तो आएगा, ऐसे भगवान के नाम कीर्तन करेंगे उसमें क्या मिलेगा, राम कहने से थोड़ी रोटी मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा बुद्धि। इससे चेतनता खो जाने पर जीवों के लिए बड़ा दुर्दशा है, उस समय मदद करने के लिए भी कोई आए तो वो भी अच्छा नहीं। कहते हैं यदि भगवान की अहेतु कृपा रही तो किसी तरह से प्रभु के नाम कीर्तन स्मरण करने लग जाए, प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे तो धीरे 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 क्या जीव अपने आत्मा के कार्य में अपने उन्मुख हुए, तो उस समय क्या होगा, आप शरीर का परिचय भूलेंगे, मन का मलिनता, मन का इच्छा, ख्वाहिश बस अब दूर हटेगा, अब तब समझेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का सेवक हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, तब आत्मा परमात्मा का दर्शन मिलेगा। और जब तक चमड़ी और दमड़ी में फंसे हुए हैं, मन के गुलाम हैं, तो आत्मा परमात्मा के साथ संबंध नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा परमात्मा के साथ बातचीत करना कितना आसान है, बड़ा आसान है, किंतु आत्मा परमात्मा से बात नहीं करेगा। जब तक किसी व्यक्ति से बात नहीं करा तब तक तो सोचते मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे कोई चाहता नहीं, मेरे को कोई घृणा करता है, मेरे को तुच्छ उपेक्षा करते हैं, किंतु ऐसा क्यों। जब तक हम परमात्मा के साथ संबंध नहीं रखते हैं, आत्मा के साथ संबंध नहीं है, तब तक ये बद्ध जीव जो कुछ देगा वो भी हमारे लिए कष्टदायक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जीव जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उनके भावना के अनुयायी चेतन शरीर भी प्रकाशित होता है। उस समय आत्मा का स्वरूप देह, ये तो शरीर तो चामड़ी दामड़ी का दो दिन का है, किंतु आत्मा का तो ऐसा नहीं, आत्मा का अपना शरीर है, सब कुछ है, किंतु वो तो सब कुछ खो बैठा इस समय, अता पता नहीं। हाथी में गया तो हाथी बन गया, कुत्ते में गया तो कुत्ता बन गया, घोड़े बन गए, गाय बैल बन गए, कितने कितने ब्रह्मजन भ्रमण करता है, मनुष्य हो गया, उसमें पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, कोई पता ही नहीं। इससे जिस समय अपने भावना के अनुजाई चेतन देह को प्राप्त करते, प्रकटित होता है, तब जीव अपना मधुर रस में भजन कर सकते हैं। इस समय अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती हैं चेष्टा करते हैं, तब तक कोई रुचि नहीं, मिठास नहीं। उस समय चेतन देह प्रकाशित होने पर तब वो मधुर रस से भजन कर सकते हैं, मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा उस समय बहुत, क्योंकि शुद्ध देह के नित्य शुद्ध देह कैसे चिन्मय है, उसमें ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, वृद्ध है, ये युवक है, ऐसा नहीं। आत्मा न तो बूढ़े होते हैं, न जवान होते हैं, न बालक है, नित्य उनका किशोर स्वरूप है, नित्य सेवा का उनका परिचय, शुद्ध जीव सब समय प्रसन्न है और उस प्रसन्नता से वो सेवा करते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती है, ऐसा नहीं, उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं, ये ड्यूटी नहीं है। और ड्यूटी देने से जबरदस्ती करके तो ज़्यादा दिन चलता नहीं, दो दिन बाद उनको कष्ट कर और बड़े भार और उनको दुख तो मालूम होता है, इसलिए छोड़ के भाग दें। किंतु जब अपना नित्य शुद्ध देह चिन्मय शरीर प्राप्त करते आत्मा का, तो उस समय वो आत्मगत शरीर से परमात्मा के सेवा करते हैं और उस समय परमात्मा स्वीकार भी करते हैं। अभी यदि कहीं से पानी लाना है, कहीं से सब चीज़ एकत्रित करना है, भगवान को समर्पण करना है, तो हम उसके लिए कष्टों का अनुभव करेंगे, क्योंकि शरीर से करते हैं और शरीर से भी कष्टकर नहीं होता, मन परेशान हो जाता है, इससे दोनों ही हमारे लिए वजन है, भार है। किंतु आत्मगत सेवा में ये भार नहीं है, ये शुद्ध शरीर में आत्मा का ये वजन नहीं है। वो परमात्मा की सेवा जैसे माताएं अपने बच्चे के लिए करते हैं, किंतु जब तक छोटा है, बड़ा हो गया तो नज़र रखते हैं और यदि बात नहीं माना तो फिर विरोधी हो जाएगा। इससे कहते तब तक वो सद्गुरु चरणाश्रय नहीं कर पाता है, सद्गुरु चरणाश्रय नहीं होता, अर्थात गुरु मिलने से ही गुरु की बात नहीं मानते, तो आश्रय कैसे लिया? जिनके आश्रय लिया उनके विचारों को बातों को तो मानेंगे ना, किंतु हम नहीं मान सकते, तो मेरा चरणाश्रय कहाँ लिया? इसे प्रभुपाद जी कहते हैं सद्गुरु के अनुगत्य करना, उनके बातों को मानना, विचारों को मानना और उनके अनुजाई चलना, ये भी बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। जब तक शरीर में बद्ध है, मन के अंदर बद्ध है, तब तक वो नहीं सुनता तो वो आश्रय नहीं कर पाता। इससे जिस दिन सद्गुरु के चरणाश्रय करेंगे, संपूर्ण रूप से उनके चरणों में शरणागत होंगे और विचारों को मानेंगे, पालन करेंगे, उसका फल क्या होगा? तुरंत प्राकृत अभिमान नष्ट हो जाएगा और प्राकृत अभिमान रहेगा नहीं उस समय। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवक हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, या मेरा ये क्षत्रिय ब्राह्मण सन्यासी ब्रह्मचारी, ये सब उसमें सब खो जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा। सद्गुरु यदि चरणाश्रय किया, अर्थात पहले अभिमान नष्ट होगा, फिर गोलोक प्राप्ति होगा। और निष्कपट सेवा के द्वारा उसके मुक्त करने उपास्य मानव मुक्त हो जाएंगे। अब बद्ध नहीं, अब कोई आकर के उनको बहका नहीं सकता, फंसा नहीं सकता, अपने गुलामी नहीं कर सकता, कोई आदली चमचे नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं, समय भी नहीं और रुचि भी नहीं और उन चीज़ों की आकांक्षा नहीं कि मैं यदि इनके चापलूसी करूँगा तो ये मुझे कुछ इनाम देंगे, दक्षिणा देंगे, कुछ मेरा कल्याण करेंगे, कोई इच्छा नहीं। इसलिए वो निरपेक्ष, उससे परे हो जाते हैं। ऐसे परे हो जाते हैं, मुक्त हो गया तो मुक्त को के समपट जाए। उस समय मन मन बात कर रहा है, बैठे हैं 10-20 घंटा, क्या कर रहे हैं, ओ जहाँ मुक्त पुरुष लोग हैं उनके साथ में भगवत सेवा का आलोचना कर रहे हैं और उनके साथ भगवत सेवा शिक्षा करके भगवत सेवा में अपन को नियुक्त कर दिया है। तो कहते हैं उस समय गुरु नित्यानंद और बलदेव प्रभु उन लोगों के आश्रय में रहते हैं। अभी वर्तमान में शरीर और मन के द्वारा साथ रह, जब तक हम हैं तब तक उन मुक्त पुरुषों के साथ संबंध नहीं है, उनका नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करेंगे ये भी नहीं अच्छा लगता। और जितने परिमाण में हम सद्गुरु के निकट शरणागत होते हैं, अर्थात उनके विचारों को मानते हैं, पालन करते हैं और जीवन में हैं उनके निकट प्रार्थना करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो इतना ही सेवा के फल से मुक्ति मिलेगा। और मुक्त होने पर मुक्त गुरु के समपट जाए, अर्थात बद्ध जीव नहीं, अब जो भगत परिकर हैं नित्य मुक्त, उन लोगों के साथ संबंध होगा। इससे शुद्ध साधु वो जड़ जगत के किसी के साथ उनको लेना नहीं, देना नहीं, खाना नहीं, खिलाना नहीं, पहनना नहीं, पहनावा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए नहीं। कोई दे देता है तो प्रशंसा नहीं, कोई ले जाता है तो दुख नहीं, ओ धन धर्म से अतीत। इस ये केवल मात्र निष्कपट सद्गुरु की सेवा करना, किंतु उसमें रुचि नहीं, क्यों, हम पालन करना चाहते नहीं, आचरण करना चाहते नहीं। और ऐसा होने पर यदि सद्गुरु के निकट शरणागत तो हुआ तो नित्यानंद प्रभु या बलदेव प्रभु जिम्मेदारी ले लेंगे, अब उनका है जिम्मेदारी। क्योंकि जब तक हम सद्गुरु का आश्रय पदाश्रय नहीं करते हैं तो हमारा ताप भी दूर नहीं जाता, दुख दूर नहीं जाता। इससे भगवान क्या करते हैं, कृपा करके सेवक के जब देखते हैं निष्कपट है, आरती है, तो उनको भव समुद्र से जल्दी प्रभु अपने चरणों के सानिध्य में और सेवकों के साथ में प्रीति संबंध जोड़ देते हैं। पहले भक्तों के साथ संबंध हो जाता है, अब उस समय लौकिक वैदिक कर्म या कोई भी कार्य तो उनको रुचिकर नहीं और उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु या बलदेव प्रभु के ऊपर जिम्मेदारी दे देते हैं और भगवान स्वयं उनका कल्याण के लिए व्यवस्था करते हैं। अकेले हैं, कोई नहीं है, किंतु वो भगवान स्वयं भगवत परिकर भेज देंगे। अपने लोगों को भेज देंगे, परिचय करा देंगे, उनके साथ संबंध करा देंगे, धीरे धीरे करके हैं उनको बहिर्मुख लोगों से मिलने भी नहीं देंगे। ऐसा लगता है कभी कभी कि यहाँ से जाए दो चार लोगों से बातचीत करे, हैं कोई बुलाए तो उनके पास चले जाए, किंतु उस समय अंतर्मुख होने पर भगवान और भगवान के भक्त क्या करेंगे, उनको उधर भी नहीं जाने देंगे, और जाएंगे तो हैं ऐसे विपत्ति खड़ा करेंगे, मान अपमान, नहीं तो एक्सीडेंट, हैं नहीं तो रोग शोक के द्वारा पीड़ित, थोड़ा हटा तो दुर्दशा कर देंगे। अपने लोगों के लिए तो जो अपनापन नहीं है, तुम करो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, फल तुम भोगोगे। लेकिन इधर क्या होता है, शासन है, भगवान प्यार करते हैं तो उनको बहिर्मुख नहीं हो जाए तो उनको पीड़ा देते हैं, क्योंकि यदि बहिर्मुख हो गया बर्बाद हो जाएगा, तो पहले ही उनको शासन करते हैं, हैं ये बहुत कृपा है। जैसे साधुओं को बड़ा दुख है बाहर से देखने में, क्यों भजन कर रहा है, भक्ति करता है, गुरु सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, थोड़ा बहुत चित्त इधर से उधर हो गया, बहिर्मुख होने जा रहा है, तत्क्षणात भगवान अच्छा पीड़ा देते हैं जिससे बहिर्मुख हुए नहीं, हैं नहीं तो उधर रुचिकर हो जाएगा फिर बर्बाद हो जाएगा, इससे तो उनको वो रास्ता ही काटो। ये विशेष कृपा का परिचय है, भगवान की अहेतु कृपा है। अभी उदाहरण के लिए कहते हैं, प्रहलाद महाराज छोटा सा है, बहुत सारे गुरुकुल में बालक है, हैं उन लोगों से बैठ करके राजनीति नहीं सीख ले, साम दाम दंडभेद नीति नहीं सीखे, हैं क्या हुआ, गुरु संडा मर का सिखा रहे हैं, हैं तो प्रहलाद नारद जी से कितने चीज़ सीखे हैं, उनकी कृपा है। नारद जी ने छोड़ दिया, देखते हैं अब क्या करें, अब क्या करते प्रहलाद। जब असुर कुल में आए तो हैं वो नारद जी की बातों को मान रहे हैं, गुरु का मत मान रहे हैं, ये लोग विरोधी हो गया, ये लोग उनको मारना चाहते हैं, किंतु वो भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते और इनकी बात मान नहीं सकते, विरोध शुरू हुआ, किंतु आखिरी में हैं गुरु स्वयं जाकर कहते हैं हिरण्यकशिपु को, तुम्हारे चंदन वंश में ये कुलाड़ी है, वंश को नाश करने के लिए आया है, इससे प्यार मत करो, और शिष्य किसका है, नारद जी का, और उनके विरोधी बातें कर रहे हैं कि देखते हैं प्रहलाद का निष्ठा कहाँ है, बदल जाए नहीं, शासन से ताड़न भर्षण से नहीं, वो अपने में पक्का है, आखिरी में सबको लेकर के भगवत भजन करने लग गए, तो वहाँ पर सब भगवान के परिकर, भगवान स्वयं पहुँच गए ना। इसे कहते हैं यदि भगवान की कृपा है, किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो सेवक का निष्कपट आरती होता है, तो उनको भगवान सब समय प्यार करते हैं। जैसे अच्छा कोई पढ़े लिखे बच्चे स्कूल के यदि अब कमज़ोर हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो मास्टर शासन करेंगे, असत्संग में गया तो गाँव वाले भी बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, और जो बदमाश है गुंडे हैं दुष्ट हैं उसको कोई नहीं बोलता। इसलिए शासन भगवान की भक्तों की ये भगवत अहितु कृपा है, वो चाहते हैं बर्बाद नहीं हो। इसे कहते यदि संसार में रुचि क्यों होता है, कहते जब गुरु वैष्णव को उद्वेग देते हैं ना, तो उनको अमंगल अर्थात संसार में रुचि होता है, संसार अच्छा लगता है, धन दौलत वैभव और भोग राग बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। हाँ उस समय शिव ठाकुर कहते हैं जिनके ऊपर भगवान का दया नहीं है और संसार उनको बड़ा रुचिकर और उसी के लिए ही अपना जीवन का अमूल्य समय उनके लिए देते हैं और उन लोगों का तोषण और पोषण करने के लिए ही समय बर्बाद करते हैं। कहते हैं ये मनुष्य नहीं है। गुरु वैष्णव कैसे हैं? वज्रादि भी कठोर और कुसुम से भी कोमल है। कहते हैं वो लोग बाहर में शासन करते हैं, रक्षा करते हैं, किंतु अंदर में कैसा है कोमल। बस थोड़ा भक्तिवृत्ति देखा, सेवा करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, सब कुछ नौछावर करके उनके पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। इससे साधन लोगों के साथ व्यवहार, भक्तों के साथ व्यवहार एक सा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं है। गुरु वैष्णव के साथ खेल तमाशा नहीं, मजाक नहीं, क्योंकि ये लोग बड़े सीरियस है, बहुत ये लोग संसार से उन्मुख विमुख है। इससे ये लोग कभी भी प्राकृत कार्यों में जाकर के प्राकृत विचारों में किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते। खत यदि गुरु का शासन स्वीकार किया तभी शिष्य है, नहीं तो शिष्य नहीं है, शिष्य कहना नहीं चाहिए। रूपा जी कहते मठवासियों के आचार विचार जो छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे जितना छोड़ेंगे इतना ही संसार में प्रवेश करेंगे, संसार में रमेंगे। देखना पड़ेगा मठ का स्वार्थ, मठ सेवा का गुरुत्व। यदि ये अनुभव नहीं होता है तो अपने आप ही संसार अच्छा लगेगा। कहते मठ साक्षात वैकुंठ है, संसार नरक के द्वार है। महत्सवाम दारमह विमुक्ति स्तमदारम ज्योतिष संगी संगनम। ऐसे मठ वैकुंठ पथ है और संसार नरक के द्वार है। यदि भगवत प्रसंग से विमुख हुआ तो तुरंत संसार में पतन है। इससे श्रीमद् भागवत में तीसरा स्कंध में नवा अध्याय में दसवां श्लोक में कहते हैं जिस समय दिन आ रहा है, रात आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार मनोरथ और हमारे पास में सुबह उठते ही कितने प्रकार मनोरथ, मनरूपी रथ में चढ़ करके शरीर को इंद्रियों को अपना रथ बना करके उसको चला परिचालना करते हैं, किंतु उसका परिणाम क्या होता है? ऋषि महर्षियों की तरफ नहीं, भक्तों की तरफ, भगवान की तरफ नहीं जाकर के विमुख होकर के संसार में प्रवेश कर जाते हैं। इससे अधोक्षर कृष्ण की सेवा ही सुखेशना सबसे सुख का आगार है। और नहीं तो कृष्ण के सुख के लिए यदि हमने कुछ नहीं करा तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम प्रसन्न नहीं हो सकते। इसे नाम भजन सर्वसिद्धि को देने वाला है। नाम भजन के बिना नामिका भजन नहीं होता। यदि कृष्ण का दास होने के लिए चेष्टा करते हैं तो हमारा कल्याण है, और यदि माया के दास बनते हैं तो अकल्याण और अमंगल। हम अपने अपने हाथ में उठा करके जहर पी रहे हैं तो कौन उसके लिए क्या करेगा? इससे भगवान के नामों का स्मरण करना, भगवान के पास में रहना, और जिम्मेदारी फिर उनकी होती है, हम अपने आप प्रसन्न होंगे। और यदि नाम नहीं करेंगे, स्मरण प्रभु को नहीं करेंगे, नाम भी करेंगे तो स्मरण करेंगे किसी और की, तो किसका नाम कर रहे हैं? जैसे कृष्ण कितना हज़ार लोगों के नाम होता है, लोगों ने नाम रख लिया तो हम किसी को याद कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो किसको किस क्या कर रहे हैं? क्या हम अजामिल बन रहे हैं क्या? हैं अजामिल क्या तो आत्मकल्याण हो चुका था, क्योंकि वो ऋषि महर्षि को साधु को सम्मान करता था, भले ही बह लिया है शिकार खेलता था, किंतु साधु लोग आए तो बालक जन्म ले लिया तो बोले इसका नामकरण कर दो, आप लोग हमारे भाग्य, आप लोग आ गए, वो सम्मान किया, आपको क्या दूँ, शेर का खाल दूँ, हिरण का खाल दे दूँ? हाँ, बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो इनका नामकरण कर दो। नामकरण करता हूँ। बस क्या किया, भगवान के मंत्र और नाम हाँ दे दिया। उनको पता नहीं कि गुरु मुझे मंत्र दे दिया, उनको है कि मेरे बेटे का नाम रख दिया। तो चमड़ी और दामड़ी तो नारायण नहीं होता, तो चमड़ी दामड़ी का नाम नारायण होता भी नहीं, और नाम देने से भी नारायण नहीं बन जाएगा, नारायण नारायण ही है। तो वो साधु को सम्मान करता, जब बच्चे को याद करता, बुलाता, वो साधु सुन तो ध्यान में आ जाता। तो हम यदि हरिनाम भी करें, यदि गुरु ध्यान में आ गया, भगवत परिकर ध्यान में आ गया, भगवान ध्यान में आ गया, तो नाम अपराध से नामवास होगा, नामवास से वे शुद्ध नाम की तरफ जाएगा, किंतु ये भी तो नहीं होता। बच्चे का नाम नारायण है, और बच्चे हैं उसका नाम नहीं याद, इनको दिन रात याद कर रहे हैं, क्योंकि साधुओं ने ये शुद्ध नाम दे दिया। तो इससे कहते हैं भाई, यदि हम हरिकथा सुनते हैं किंतु हमारा तो कल्याण नहीं हो रहा है, क्यों? कहते कान को बंद करके हम श्रवण कर रहे हैं, मन को कहीं और दे दिया, वो मन कुछ याद और कुछ कर रहा है, हम ढांचे यहाँ शरीर को लेके बैठे हैं, तो हम मन तो कहीं और है, तो मन दे करके तो सुनते नहीं है, कि मन अस्थिर है। यदि हम सुनते हैं तो सुनते तो आचरण भी करते, इसका मतलब हम सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, आचरण कैसे करेंगे, कभी संभव नहीं है। इससे सवर्ण विषय जब तक आचरण नहीं करते हैं तो उसका फल भी नहीं होता। इससे कहते हैं प्राण देकर के हरिकथा सुनो, और आचरण करने के लिए चेष्टा करना है, प्रार्थना करना है, तब तो कुछ लाभ है। आने तो समय जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि या तो कान को बंद करके रखा, या तो मन को कोई और पहुंचा दिया, हम सुनते नहीं हैं। सुनने से ये कथा अपने आप आचरण करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगी। जैसे कहते मन तो चंचल है, श्रवण विषय जो श्रवण किया, यदि आचरण करने की कोशिश नहीं करते तो फल कहाँ से होगा। रूपा जी कहते हैं देखो, भक्ति और भोग एक ही चीज़ नहीं है। हमने थोड़ा सा काम भजन किया तो हमें फल चाहिए, अर्थात उसको ही भोग करते हैं, करना चाहते हैं। हमने इतना परिक्रमा किया तो इसका फल चाहिए, जाते हैं परिक्रमा, क्या बोलेंगे, मेरे को एक लड़का चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को दुकान मकान चाहिए, घर मंदिर चाहिए। कुछ लोग तो परिक्रमा देते हैं, हमें शिष्य चाहिए, सेवक चाहिए, हमें है नहीं, दे दो, इसके लिए परिक्रमा करते हैं। तो कहते हैं जो कुछ करते हैं उसको भोग करना चाहते हैं, भगवान को भी सब कुछ भोग करना है, चाहिए मुझे है। तो क्या कहते हैं, ये भक्ति है या भोग है, क्या है? कहते भक्ति और भोग एक नहीं है, जहाँ भक्ति है वहाँ भोग नहीं है, और जहाँ भोग है वहाँ भक्ति नहीं है। करते बहुत साधन, रोज परिक्रमा देते हैं, दंडोती कर रहे हैं, कितने भक्ति का अंग स्तव स्तुति प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु किसके लिए, मुझे फल चाहिए, मुझे अन्य। तो कहते सबका इतना नाम होता है, प्रशंसा होता है, मेरा नहीं हो रहा है तो चार तो बैनर लगाओ, एजेंट लगा दो, पोस्टर लगा दो, और चारों तरफ हाँ लोगों से हाँ मेरी प्रशंसा करवाओ, तुमको मैं इतना दे दूँगा। तो साधन करके भी यदि भोग करने की इच्छा है तो यह अपना इंद्रिय तर्पण है, भोग है, और भक्ति है क्या? कृष्ण सुख विधान मही। एक एक दादा नाती को बोलता है, जानता है मैं कितने बार तीर्थ किया, कितने मैंने दंडोती दी, कितने मैंने दान की, कितने मैंने पुण्य की, कितने बार गंगा स्नान की, कुंभ मेला किया। तो नाती एक दिन बोलता है, दादा जो कुछ करा सबको तो खोया, सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि अपने अहंकार अपने बड़ाई अपना कह कह करके सब मिट्टिया माटिया मिट कर दी। अब भाई कुछ नहीं है, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपना नाम प्रतिष्ठा के पीछे दुनिया को सुनाते हैं, तो आपका करिकराई सब बर्बाद हो गया। अब चुप हो गया नाती जब बोलता है, चुप हो गया है। क्यों? उसका बुद्धि तभी निर्मल है, वो सटिया गया ना, मैंने किया तो जो कुछ किया उसको तो भोग कर लिया, और भोग और लोग प्रशंसा करे, मेरी पूजा करे, मैं और भोग करूँ, किंतु जवाब देने वाला तो नहीं। और नाती ने बोल दी, अच्छा कर ठूस दी कस दी, बार दादा अब कुछ नहीं करा, बेकार हो गया, सब गया है। तो कहते हैं भोग अंधकार है, भक्त अभिमान और भगत सेवक का अभिमान बहुत फर्क है। भक्त भक्ति करता है, भगवत सेवा करता है, दीनहीन अकिंचन निष्किंचन, भगवान ने मुझे सेवा में लगा रखा है, मेरा कल्याण है, और मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। और भोक्ता लोग भोगी लोग बस ढिंढोरा पिटता है, वो आजकल तो इंटरनेट है, इंटरगेट इंटरनेट, सब जगह अपना फेसबुक में अपना फेस दिखाएगा, बोलेगा देखो मैं ये नहीं किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। भगत सेवक भगवान की सेवा करता है तो कहते हैं जब भगत सेवक अभिमान होता है, भक्ति करते हैं, अंधकार नहीं है, भोग अंधकार है, भक्ति आलोकमय है, उजाला है, उसमें प्रकाश में आकर के देख सकता है मैंने क्या किया, गलत किया, अच्छा किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया ठीक नहीं। और वो प्रार्थना करता है मैं कैसे ठीक अच्छे मार्ग में आऊँ, अच्छा सीखूँ, अच्छा सेवा करूँ। कहते जब भोग की तरफ जाते हैं ना, शोक मोह भय उनके निकल आता है, और आसक्ति। और जब भगवान की तरफ जाता है तो उसका परिणत क्या? मुक्ति, सब प्रकार के सुख सब आकर के अपने आप। भक्ति स्थिर स्थिरतरा भगवान ज्योतिष्यत दिव्यन्न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति सगा मुकुलताजलि सेवते स्मन धर्म अर्थ काम गत समय प्रतीक्षा। जब भोग की तरफ जाता है, भय दुख मोह शोक, और भगवान की तरफ जाता है जाना भक्ति, तो धर्म अर्थ काम मुक्त आकर के हाथ जोड़ते हैं, मुझे ले लो सब, किंतु उसको परवाह नहीं किस चीज़ की, यदि इसको लो लो तो सेवा छूट जाएगा, माला मंत्र नहीं कर सकते, जिम्मेदारियाँ आ जाएगा, और ये पकड़ लेगा जकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। एक बार ले लो बड़ा आसान है लेना, क्या कर बोला हमारा मंदिर ले लो सेवा करना, हम दंडोलत सब दे देंगे, अच्छा हमारे जमीन में कुटिया बना देते हैं यहीं रहो, भजन करना माधुकुरी भी दे देंगे, फल फूल कुछ कपड़ा लत्ता जो कुछ ये सब देंगे, डॉक्टर फाक्टर सब, बस ले लिया तो बाबा ने वो पंप चल रहा है थोड़ा देख लेना, और रात को पहाड़ी आ जाएगा खा जाएगा, थोड़ा नज़र रखना बाबा अभी फसल पक गया है, आम पेड़ में पक गया है, बाबा ध्यान रखना। तो धीरे 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 जकड़े। आज यदि भगवान के सेवा के लिए होता तो क्या होता, एक नहीं हजार सेवक। आप चिन्ह अपना अपराकृत प्रभु के सेवा में अपने को नियुक्त किया तो आपको मदद करने के लिए भी कितने सारे इनग्रेडिएंट आ जाएंगे। और आपने विषय की भोग की जिम्मेदारी ले ली तो वहाँ पर सब प्रकार के भय है, शोक है, मोह है, आसक्ति है, और धीरे 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 करके उसका परिणति बड़ा दुर्दशा। इससे सावधान होकर के अपना भगवान के भजन और ये करना चाहिए, ये बुद्धिमान का कार्य है। और नहीं तो दुख के रास्ता को अपनाना नहीं, पहले भगवत भजन और भगवान की भक्ति, भगवान के सेवा, इसके बाद में और जो कुछ। किंतु प्राकृत और जो कुछ है वो भगवान इशारे से चुटकी बजाते हुए चला देंगे, कैसे हो रहा है कोई जानता नहीं। किंतु भक्ति छोड़ दी, भगवान के प्रतिविधान छोड़ दी, अपना प्रतिविधान के लिए चेष्टा किया थोड़ा बहुत, बस गए। इससे भक्तों का दर्शन और भोग दर्शन एक नहीं, सेवा दर्शन, सेवा के उपकरण सेव्य ये क्या करेगा, हरिकथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नित्य निरंतर जमयी, तब भोग आकर के हमें ग्रास नहीं कर सकता। इसमें महाप्रभु ने कहा ना, ग्राम्य बर्तन ना कही भी, ग्राम्य बर्तन ना सुनी भी, भालो ना खाई भी और भालो ना पड़ी भी। अब दस जने आ गए गाँव उल्टा पर प्रजल्प कर रहे, आप बैठ गए तो आपके बारे आकर उल्टी करना शुरू कर देगा, हमारा ये दुख है, हमारा बेटा बात नहीं मानता है, हमारा घरवाली हमारा नज़र नहीं रखते, हमारे माँ बाप हमारे ध्यान नहीं रखते, बस सुनते सुनते पागल हो जाएंगे। बस वही धीरे धीरे करके बैठ जाएगा घुस के घुसपेटी। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं प्रजल्प, हाँ मशगूल हो गया, दस जने बैठे, पाँच जने बैठे, दो जने बैठे, बस शुरू हो गया। कहते हैं नहीं, वो समय नष्ट मत करो, सत्संग भगवत सेवा का विचार खो नहीं, और ग्रामवास नहीं करना है, बहुत असुविधा होगा। हरिकथा श्रवण कीर्तन ये साधन और साध्य है। कितना भाग्य के फल से मनुष्य जन्म मिला, और कितना भाग्य से तो गुरु कृपा भगवत सेवा का सौभाग्य हुआ। और प्रजल्प यदि करने लग गए ग्राम्य वार्ता तो ये सौभाग्य को हेट किया, अवज्ञा किया। हम हरिकथा का आलोचना भूल गया, हरि संबंधी विषय का अनुशीलन छोड़ दिया, तो अब सुदर्शन लाभ नहीं, अब कुदर्शन होने लग गया, मांस दर्शन भोग दर्शन होने लग जाएगा। उस समय निष्कृति नहीं है, कोई चारा गुजारा नहीं है। इसके लिए श्रवण कीर्तन स्मरण भगवत सेवा के छोड़ने की और इधर उधर नज़र डालने की और किसी को सुजोग देने की ज़रूरत नहीं। आकर के बैठ गया तो घुसपैठी, पहले तो नाम का ढंग दिखाएगा सेवा का, फिर पीछे पीछे घुस जाएगा, मेरे को ये का तकलीफ है, ये तकलीफ है, मैं घर बार को छोड़ के, मेरे माँ बाप दुखी है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हैं वो दुखी बिल बिला रहे हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था कर दो। धीरे 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 कर घुसपैठी काला इतना तक दबा लेगा, वो श्रवण कीर्तन करेगा भी नहीं, करने देगा भी नहीं, बस यहाँ आकर के भी सुनेगा मेरे माँ का बीमारी है, मेरे बहन बीमार है, मेरे जीजा ऐसा है, मेरे भाई ऐसे हैं, बस सारा दुनिया की सब उल्टी ला करके आपके ऊपर में आपका अभिषेक करेगा। आप जबरदस्ती करके चाटो क्यों नहीं, मैं कैरी कर रहा हूँ, मैं लाया हूँ, आप भी लो, आप भी इसके हिस्सेदार बनो। किंतु कीर्तन के हिस्सेदार आओ, आओ बैठो कीर्तन करो, नहीं श्रवण करो, नहीं भागवत पढ़ो, नहीं मैं तो अभी तो विषय का भागवत कर रहा हूँ ना, विषय का भागवत हमारे पास है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, सारे भागवत मेरे पास है। भगवान का एक भागवत से क्या होता है, और भागवत भी तो चाहिए हैं। उस समय दुर्दशा होगा। इससे এত সব ছাড়িয়ার বর্ণাশ্রম ধর্ম, অকিঞ্চন হইয়ালয় কৃষ্ণের স্বর্ণ। কব তক ঠিকা লেগে রহোগে ভাই ঠিকাপট্টাদার, ছোড়না তো পড়েগা। হ্যাঁ, তো জানবুঝ করে কাল ছোড়না হয়, আজ ছোড়না, আবি ছোড়ো। হ্যাঁ, প্রভুকে স্মরণ কীর্তন করো। ছোড়নে কা মতলব ইয়ে নেই, ছোড়কে ভাগ্যে কহি উহা জাগার মুক্তি মিলেগা। আর ইয়াই তুম সময় দো ভগবানকে লিয়ে, কীর্তন করো, শ্রবণ করো, হ্যাঁ স্মরণ করো, সেবা করো, ইধর বচো ইসে। আর নেই বচেঙ্গে তো প্রজল্প করেঙ্গে, শুনেঙ্গে, ওই আমার অন্দর মে রমতা রয়েগা, রটতা রয়েগা, ঘুমতা রয়েগা, আর পরিশান আম খুদ হইঙ্গে। আর ইয়ে কর্তব্য তো আমারও নেই, জিম্মেদারি তো মেরা নেই, সংসার তো আমার রচিয়া নেই, সংসার কা ঠিকাপট্টা আমারও নেই, এসকা সৃষ্টিকর্তা জানে। উনি রচিয়া যে জীবকা কর্ম হ্যাঁ ভোগেগা। মহাপ্রভু খুদ বলতে ছোটে হরিদাস কে লিয়ে স্বকর্ম ফল উপমান বলতে, ও জায়গার গে প্রয়াগরাজ মে ডুবকে মার গেয়া বলে স্বকর্ম ফল উপমান, যাইসে কর্ম এসে ফল আমগা করেন। কিন্তু কিসকো কেসে মদত কর সকতে, সমঝানে সে মদত কর হোগা। হ্যাঁ, যদিও শ্রবণ কীর্তন মে লগ গেয়া তো তো উনকা মদত হো যায়গা, আনে হাজার সমঝা দো কই নে মানেগা, শুনে গেই নি। কেউ নেই শুনেগা, সংস্কার নেই, রুচি নেই, ইচ্ছা নেই, তো জবরদস্তি করে দেনে সে ক্যা হোগা, লেগা ক্যা। হ্যাঁ, কিছু জরুরত নেই, লেগা নেই। এসে যদিও শ্রবণ কীর্তন করনে লগ যায়, রুচি হয়ে, তব উনকো ভগত কথাই মূল্যবান, ভগত কীর্তনই অতি মূল্যবান। হ্যাঁ, ভগত স্মরণ উনকে উপাদেয়, তব সময় নষ্ট নেই করেগা, অবিধা উদা নষ্ট নেই করেগা, প্রজল্প নেই করেগা, অ না শুনেগা না বলেগা, জানতে আমার কর্ম আমার পায়ে আয়া, কায়কু বললে লাভ কে। এতে দিন তো কীর্তন হরিনাম কর লেতা, এতে দিন মে কীর্তন শ্লোক ইয়াদ কর লেতা, ভগবানকে সেবাকে লিয়ে আপনা সময় দিয়ে দিতা, কায়কু বরবাদ করে। সে ও ব্যক্তি বড় সিরিয়াস, বড় হ্যাঁ কঠিন হয়ে যাতা, তব উনকো পাপ ভি নেই, অপরাধ ভি নেই। পাপ তব হতা হয় সমাজনীতি ভঙ্গ কিয়া তো, অপরাধ কব হতা হয় গুরু বৈষ্ণবকে নেই মানা, অবজ্ঞা কি মানে উনকে বাত নেই মানা, ইয়া আচরণ নেই করা। পাপ তো দূর হো সকতা হয় কিন্তু অপরাধ দূর নেই যাতা, পাপ কা প্রায়শ্চিত্ত সে যাতা হয় অপরাধ নেই যাতা। এসে পতিত পাবন গৌর নিত্যানন্দ প্রভু নে ক্যা কিয়া, ভুবন মঙ্গল নাম দে দিয়া, নাম করো সময় এক মিনিট নষ্ট করো, নাম করো, আর কীর্তন করো, শ্রবণ করো, অপরাধ জায়গা। আব হাম কাল শুনেন গোতমান।
দয়ামৃতায় চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়ামৃতায় চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন, গায়নিতা চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন, এ মন দয়া তো নাই রে, মাকে প্রেম দে মন দয়াত নাই রে, মাকে প্রেম দে ও করে আপারা ধুরে যাবে পাবে প্রেমধাম। আপারা ধুরে যাবে পাবে প্রেমধাম। ও নামে আপারাধে বিচার তো নাই হে, ও নামে আপারাধে বিচার তো নাই হে, অদয়া নিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, দয়নিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে গুছবে বন্দন, কৃষ্ণ নামে রুচি হবে গুছবে বন্দন, কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে, অ কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে, তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন, তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন, কৃষ্ণ রাতে বিনা জীবন তো মিছে হে, কৃষ্ণ রাতে বিনা জীবন তো মিছে হে, শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাবে দর্শন, শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাবে দর্শন, গৌরা কৃপা হলে হে, গৌরা কৃপা হলে হে, অশেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাবে দর্শন, অদয়নিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, 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 অদয়নিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, ও হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরি বোল হরি বোল হরি বোল নিতাই গৌর হরি বোল, নিতাই গৌর হরি বোল হরি বল হরি বল হরি বল, हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदी।